उर्वशी की कथावस्तु। उर्वशी की कथावस्तु 5 अंकों में विभाजित है। इसका सम्यक अपूर्ण परिचय प्रदान करने के लिए इसे अंकानुसार देना ही अधिक उपयुक्त है, अतः यहाँ इसी क्रम से दी जा रही है। सूत्रधार और नटी के परस्पर संवाद से उर्वशी की प्रेम कथा प्रारंभ होती है। सूत्रधार और नटी पुरूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के एक मनोरम उद्यान में चांदनी रात का रसपान कर रहे हैं। जगती के कणकण में चंद्रमा की रजत रश्मियाँ व्याप्त हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश चंद्रमा की किरण रूपी करों से संपूर्ण धरा को अपने आलिंगन पाश में बद्ध कर लेना चाहता है। इस प्रकार प्रकृति के उद्दीप्त आलंबन का आधार लेकर कवि ने आगामी पुरूर्वा उर्वशी की प्रेम कथा का संकेत दे दिया है। मादकता के इन शांत क्षणों से में ऊपर आकाश में रचनाओं एवं नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। बहुत सी अप्सराएं एक साथ नीचे उतरती हुई दिखाई देती हैं। नटी का विचार है कि अप्सराएं फूलों की सखियां तथा विधु की प्रेयसियां हैं। सूत्रधार नटी को समझाता है कि ये न तो फूलों की सखियां हैं और न ही चंद्रमा की प्रेमिकाएं हैं, अपितु अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं तथा कामासक्त मन की कामनाएं हैं। अतः ये धरती पर प्रेम का स्पर्श पान करने के लिए आती हैं। इसी बीच तीन अप्सराएं सहजन्या, तंभा और मेनका पृथ्वी पर उतर आती हैं। नटी और सूत्रधार वृक्ष की छाया में आकर अदृश्य हो जाते हैं और अप्सराएं फूल, हरियाली और झरनों के पास घूम कर गाती और आनंद मनाती हैं। समवेत गान गाने के पश्चात परियों का परस्पर वार्तालाप दिखाया गया है। वास्तव में यह वार्तालाप मूल कथा तक पहुंचने की भूमिका है। मेनका प्रश्न करती है, धरती और अंबर में क्या भेद है? दम्भा उत्तर देती है कि मर्त्यलोक मरने वाला है पर सुरलोक अमर है। मेनका पुनः रंभा के उत्तर का स्पष्टीकरण करती हुई कहती है कि हम अमर होते हुए बड़ी अभागनी हैं, क्योंकि हमें व्यंजनों की गंध लेकर ही तृप्त होना पड़ता है। हमारी रसना भूतलवासियों की तरह पदार्थों का रसना द्वारा मधुर स्वाद लेने में असमर्थ है। इस दृष्टि से धरावासी धन्य भाग्य हैं। यद्यपि इनका जीवन अत्यंत क्षणिक है, फिर भी वे अपने 2 दिन के जीवन में धधक धधक कर जीते हैं। मेनका द्वारा पृथ्वी की अमित महिमा सुनकर सहजन्या मेनका पर व्यंग कसती है कि मुझे अब पता लगा कि तुम धरती की इतनी मुक्त कंठ से प्रशंसा क्यों कर रही हो। संभवतः उर्वशी की तरह तुम्हारा ही मन कहीं फंसा है, मिट्टी का कोई मोहन अंतर में आन बसा है। मेनका को उर्वशी की प्रेम कथा का ज्ञान नहीं था, अतः सहजन्या बताती है कि एक दिन उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुबेर के घर से वापस इंद्रपुरी को लौट रही थी। इसी बीच एक राक्षस बाज की तरह उर्वशी पर झपटा और उसे अपनी भुजाओं में समेट कर आकाश में उड़ गया। उर्वशी ने आत्मरक्षा के लिए बड़ा शोर मचाया। क्रंदन ध्वनि सुनकर एक राजा उर्वशी की रक्षा करने के लिए दौड़ा। राजा और राक्षस दोनों में परस्पर मल्ल युद्ध हुआ और अंततः गत्वा उर्वशी को उसने उसका अलकवल से मुक्त किया कर दिया। मगर विधि की विडंबना देखिए, उर्वशी उस दैत्य के बाहुपाश से तो मुक्त हो गई, लेकिन उस पुरुष रत्न के प्रेम में फंस गई। यह प्रेम एकांगी नहीं था। धरती पर राजा पुरूर्वा विरह की आग से दग्ध हो रहा था और स्वर्गलोक में उर्वशी उस काम मूर्ति की कठोर बाहों में अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए व्याकुल हो रही थी। रंभा उर्वशी के इस प्रेम की भर्त्सना करती है। वह कहती है, हम अप्सराओं का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम किसी एक की होकर रहें। हम अपने प्रेम की सुरभि किसी एक के लिए नहीं संजोती, अपितु हम तो रचना की वेदना जगा जग में उमंग भरती हैं, कभी देवता कभी मनुष्य का आलिंगन करती हैं। अतः हमारा आवास तो न जाने कितनी की चाहों में है, फिर भला कैसे हम बन रहे किसी भी नर की 2 बाहों में। इसके साथ साथ रंभा मेनका के सम्मुख एक और प्रबल तर्क उपस्थित करती है, हम अप्सराओं को धरती पर रहने वाले पुरुषों से इसलिए ही प्रेम नहीं करना चाहिए कि यहाँ रहकर नारी को माता बनना पड़ता है। इससे उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है और वह स्थितिंजन मात्र रह जाती है। अतः उर्वशी को चाहिए कि वह पुरुष प्रेम को अपने हृदय से उसी प्रकार उतार फेंके जिस तरह सर्प खेचुली को त्याग देता है। मेनका रंभा के इस दम्भ का प्रबल उत्तर देती है। वह कहती है, माँ बनने की क्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, माँ बनते ही क्रिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। गलती है हिमशिला सत्य है गठन देह की खोकर, पर हो जाती है वह सीम कितनी पयस्विनी होकर। इसी बीच उनकी एक अन्य सखी चित्रलेखा का आगमन होता है। वह बताती है कि जब से उर्वशी ने पुरूर्वा को देखा है वह बड़ी बेचैन है। आज मुझसे कहने लगी कि यदि आज कांत कांक नहीं पाऊंगी तो शरीर को छोड़कर पवन में निश्चय मिल जाऊंगी। मुझे रोको मत, स्वर्ग में मेरे लिए कहीं भी आनंद के किरण नहीं है। स्वर्ग तो स्वप्नों का जाल है और मैं सत्य का स्पर्श पाने के लिए बेचैन हूँ। अतः हे चित्रलेखी, मत देर लगाओ, जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुँचाओ। फिर भला सखियो, मैं क्या कर सकती थी। आज संध्या के समय मैंने उसे खूब अच्छी तरह फूलों से सजाया और सबकी आँख बचाकर उसे सुरपुर से बाहर ले आई। धीरे धीरे उस लोक से उतरकर मैं उसे राजा पुरुरवा के कुकोन में छोड़कर आई हूँ। यद्यपि राजा के महल में एक और भी रानी है, मगर इस विषय में हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजाओं का प्रेम किसी एक घाट पर बनकर नहीं रहता। ये तो नित्य नई सुंदरियों पर मरते ही रहते हैं, और फिर उर्वशी का सौंदर्य तो अनुपम एवं शाश्वत है। इसलिए यह पहली पत्नी कल की रानी भले ही बनी रहे, मगर उर्वशी तो पुरुरवा के हृदय की रानी बनकर ही रहेगी। लेकिन एक बात है, राजा की व्यग्रता एवं हृदय की बेचैनी से रानी ने अनुमान लगा लिया है कि उसके पति अवश्य किसी के प्रेम पाश में फंस गए हैं, इसलिए पति का प्रेम पाने के लिए चंद्र देवता का आराधन कर रही है। इस प्रकार चित्रलेखा तथा अप्सराओं में संवाद करते थे तो रात्रि के केवल 4 प्रहर शेष रह जाते हैं, अतः वे मुक्त अंबर में उड़ जाते हैं। द्वितीय अंक। प्रस्तुत अंक की कथा 2 तथ्यों की ओर लेकर चली है, पतिव्रता स्त्री की गति और पुरुष का स्वभाव। प्रतिष्ठानपुर के राजभवन में महारानी औषधनरी अपनी 2 अंतरंग सखियों के साथ बैठी हुई वार्तालाप कर रही है। उसे अपनी सखी निपुणिका से पता चलता है कि महाराज से मिलने के लिए स्वर्ग से उर्वशी नाम की एक अप्सरा आई थी। उसके साथ वे कहीं चले गए हैं। उसका सौंदर्य अप्रतिम था, ऐसा लगता था जैसे सर्प के मुख से कांतिमान मणि बाहर निकली हो। बस क्या बतलाऊं, वह तो नर के सुप्त शांत शोणित में आग लगाने वाली थी। उस चंद्रमुखी को देखकर महाराज पुरुरवा के हृदय में समुद्र के समान ज्वार भाटा सा आ गया। उन्होंने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया, और वह भी पर्वत के पंखों में सिमटी गिरी मल्लिका लता सी महाराज के हृदय में समा गई। महाराज ने उर्वशी से प्रार्थना की कि उर्वशी, मैं तुम्हारे मधुमत्त यौवन के सामने बिक चुका हूँ, अतः मुझे वचन दो कि तुम जीवन भर मुझे मिलन सुख का यह अमित आनंद देती रहोगी। निपुणिका की यह बात सुनकर औष्णेर का हृदय सन्न रह जाता है। वह सोचती है कि जीते जी मरण झेलने से अच्छा मरना है। निपुणिका समझाती है, परंतु पतिव्रता स्त्री पर मर भी तो नहीं सकती, क्योंकि राजा मंत्रियों से कहकर गए हैं कि हम 1 वर्ष पर्यंत गंधमादन पर्वत पर विचरण करेंगे, और लौटने के उपरांत नैमिषेय यज्ञ यानी पुत्रेक्षा यज्ञ करेंगे। अतः इसी धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा जीना परमावश्यक है। यह सुनकर औष्णरी और अधिक व्याकुल होती है। वह कहती है कि ये प्रवंचिकाएँ अप्सराएँ बड़ी कठोर हृदया होती हैं, अपने क्षणिक विनोद के लिए धर्म गृहणियों के प्राण लेती हैं। निपुणिका और मदनिका औषणरी को धीरज बंधाती हुई कहती है कि हे सखी, अपने धीरज के बांध हिम्मत तोड़ो। पुरुषों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। उनके हृदय में जब नारी के प्रेम की प्रथम रश्मि आलोकित होती है, तब दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। उस समय अजय केसरी सा पुरुष बेसुध होकर उसके चरणों में गिर जाता है। यही एक ऐसा क्षण है जब नारी पुरुष से जो कुछ भी चाहे वही वस्तु ले सकती है। वह चाहे तो उड़ुओं की मेखला कौमुदी का दुकूल मंगवाले, रंग वाले उंगलियां पदों की ऊषा के जावक से, सज वाले आरती पूर्णिमा के विधु के पावक से। इस पर भी पुरुष की प्रकृति बड़ी निराली है। वह संघर्षशील होता है। वह नित्य नई प्रतिमाओं का प्यार पाने के लिए बेचैन रहता है। मदनिका के मुख से पुरुष की इस प्रकृति का बड़ा हृदयग्राही वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत कराया गया है। नई सिद्ध नित्य नया संघर्ष चाहता है नर, नया स्वाद नवजय नित नूतन हर्ष चाहता है नर। ग्रीवा में झूलते कुसुम पर प्रीत नहीं जगती है, जो पद पर चढ़ गई चांदनी फीकी वह लगती है। लेकिन प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्त के रस में, पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के बस में। अब औषधनरी की समझ में आता है कि प्रियतम मेरे हाथ से कैसे निकल गए। उसने तो एक पतिव्रता नारी का धर्म पालन करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तृप्त करने का प्रयत्न किया। यदि वह भी अतृप्ति का मार्ग अपनाती तो उसके प्रियतम कभी उसे छोड़कर नहीं जाते। इसी बीच कंचुकी का प्रवेश होता है। वह बताता है कि जो सैनिक भट्टारक पुरुरवा को गंधमादन तक छोड़ने के लिए गए थे, वे संक्षेप राजा को छोड़कर वापिस नगर में लौट आए हैं। महाराज ने उनके हाथ हाथ के लिए संदेश भेजा है कि यहाँ जलवायु बहुत सुखद है, यहाँ के स्वास्थ्य दायनी पवन शीतल जल वाली झीलें लंबे लंबे चीड़ के वृक्ष और पहाड़ों पर हिम राशि मुझे काफ़ी रुचती है, लेकिन एक वंशधर के बिना सब कुछ सूना लगता है। हे प्रियतमे, क्या कभी अपने घर प्रेम का दीपक नहीं चलेगा? क्या यह दिव्य ऐल वंश आगे नहीं चल सकेगा? अतः तुम ईश्वर से पुत्र इच्छा की प्रार्थना करती रहो, देखना तुम्हारी धर्म साधना में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मैं भी यहाँ ईश्वर के आराधन में रत रखकर कुल दीपक की याचना करता रहूँगा। राजा का यह विचित्र संदेश सुनकर रानी बेबसी से मुस्कान लगी। ये तो अप्सरा के साथ रमन करने को ईश्वर की साधनाएं बता रहे हैं, और मैं इस सूने भवन में पुत्रार्चना करती रहूं, कैसा विलक्षण न्याय है। पति के संसर्ग बिना पुत्र क्या आकाश से टपक पड़ेगा? नारी कितनी असहाय है, वह अन्य किसी को अपना दुख दर्द भी नहीं बता सकती। अपनी हूक को जीवा पर लाना भी उसको शोभा नहीं देता। फिर भी प्रियतम जहाँ भी हो बिछे सर्वत्र पथ में फूल हों।